بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے. آج ہم کتاب داستان امیر حمزہ کی پہلی جلد بادشاہ کا خواب ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. اس کے مصنف مقبول جہانگیر ہیں. مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون. ایک تھا بادشاہ. میں ان دنوں 5-6 سال کا تھا. ایک دن ایک مہمان آئے, 70 سے 72 سال کی عمر, سفید داڑھی, سرخ و سفید چہرہ. لوگ انہیں سید صاحب کہتے تھے. سید صاحب کے سامان میں 20-25 موٹی موٹی کتابیں بھی تھیں. ایک کتاب کا وزن کم سے کم 2-2.5 سے تو ہو ضرور ہوگا. میں ان کتابوں کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا, بھلا انہیں کون پڑھتا ہوگا. ایک ہی کتاب کو ختم کرنے میں برسوں لگ جاتے ہوں گے. پہلے ہی دن رات کو کھانا کھانے کے بعد گھر کے سب لوگ دالان میں جمع ہوئے. چاندنی کا فرش بچھایا گیا. ایک جانب سید صاحب کے لیے تخت بچھا, اس پر گاؤ تکیہ لگا. گاؤ تکیے کے آگے ایک چھوٹی سی چوکی لگائی گئی اور اس چوکی پر انہیں موٹی موٹی کتابوں میں سے ایک کتاب سید صاحب نے کھول کر رکھ لی اور اپنی میٹھی اور سریلی آواز میں پڑھنے لگے. میں بھی ایک طرف بیٹھا تھا. تھوڑی دیر بعد سننے والے واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے لگاتے, کہیں کہیں کہہ کے بھی بلند ہوتے. وہ نہ جانے کب تک کتاب پڑھتے رہے, مجھے یاد نہیں کیونکہ میں سو گیا تھا, لیکن یہ واقعہ میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا. اگلے روز میں نے گھر کے کئی لوگوں سے پوچھا کہ وہ کتاب کون سی ہے اور اس کا کیا نام ہے جو سید صاحب رات کو پڑھ رہے تھے. کسی نے جواب دیا اور کسی نے نہ دیا. ہاں, یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس کتاب کا نام داستان امیر حمزہ ہے. پھر کئی سال بیت گئے. میں اب اس قابل ہو گیا تھا کہ اردو کی بڑی بڑی کتابیں خود پڑھ سکتا تھا. داستان امیر حمزہ کی موٹی جلدیں مجھے خوب یاد تھیں, لیکن انہیں ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا تھا. آخر ایک دن جب میں لائبریری گیا تو اللہ کا نام لے کر اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا. اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ میں سب کچھ بھول گیا, یہاں تک کہ کھانا پینا بھی. اب زندگی کی اتنی منزلیں طے کرنے کے بعد اور ہزارہ کتابیں پڑھنے کے بعد بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے داستان امیر حمزہ سے زیادہ دلچسپ, حیرت انگیز اور ہوش اڑا دینے والی کوئی اور کتاب نہیں پڑھی. اب پتہ چلتا ہے کہ پوری کتاب 46 جلدوں میں ہے اور اس کے صفوں کی تعداد 48,000 کے لگ بھگ, یعنی 200 صفحے روزانہ پڑھو تب کہیں 8 مہینے میں پوری داستان ختم ہوگی. پہلے زمانے میں نہ سینما نہ تھیٹر, لوگ تفریح کے لیے کہانیاں گھڑتے اور ایک دوسرے کو سناتے. آہستہ آہستہ بڑی بڑی داستانیں لکھی جانے لگیں. بادشاہوں کے ہاں کہانیاں کہنے اور داستانیں سنانے والے ملازم تھے اور ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی. داستان امیر حمزہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں لکھی گئی تھی اور پھر گزشتہ 900 برسوں میں بہت سے لوگوں نے نئی نئی کتابیں شامل کی, یہاں تک کہ اس کی 46 جلدیں تیار ہو گئیں. ان 46 جلدوں کو پڑھنے کے لیے آج کس کے پاس وقت ہے؟ اس لیے اب بازار میں اس کے خلاصے بکتے ہیں, لیکن چونکہ یہ بڑوں کے لیے ہیں اس لیے ان کی زبان بہت مشکل ہے, بچے نہیں سمجھ سکتے. میں نے اس کتاب کا خلاصہ لکھتے وقت صرف وہی باتیں لی ہیں جن سے بچوں کو دلچسپی ہو سکتی تھی. زبان اتنی آسان کر دی ہے کہ 5ویں جماعت کا بچہ بھی آسانی سے پڑھ سکتا ہے. یہ کتاب داستان امیر حمزہ کا پہلا حصہ ہے. پوری داستان 10 حصوں میں شائع ہوگی. مجھے امید ہے کہ آپ اسے بہت پسند کریں گے. مقبول جہانگیر. جواہرات کا خزانہ. سینکڑوں برس گزرے, ایران کے ملک پر ایک بادشاہ کباد کامران حکومت کرتا تھا. شہر مدائن اس کا دارالحکومت تھا. اس کی حکومت میں رعیت خوشحال تھی, امیر غریب سب چین کی منصوری بجاتے تھے. کباد بڑا بہادر اور انصاف کرنے والا بادشاہ تھا. اسے رعایا کی بہتری اور آرام کی ہر وقت فکر رہتی تھی. یہی وجہ تھی کہ سب اس سے خوش تھے اور اس کی سلامتی اور لمبی عمر کی دعائیں مانگا کرتے تھے. کباد کے 40 وزیر تھے. وزیر اعظم یعنی سب سے بڑے وزیر کا نام الکش تھا. یہ بہت عقل مند تھا اور بادشاہ حکومت کے کام اسی کے مشورے سے کرتا تھا. وزیروں کے علاوہ بادشاہ کے دربار میں 700 عالم اور 700 نجومی بھی تھے. یہ لوگ بادشاہ کو دانائی کی باتیں بتاتے تھے. انہی دنوں شہر مدائن میں حضرت دانیان علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نہایت نیک اور سیدھا سادہ شخص بھی رہتا تھا. اس کا نام خواجہ بخت جمال تھا. وہ نجوم میں اس قدر ماہر تھا کہ لوگ دور دور سے اس کے پاس اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے آتے تھے. بخت جمال جو کچھ بتاتا وہ سب سچ نکلتا. اگر وہ چاہتا تو اپنے اس ہنر کی بدولت چند روز کے اندر اندر مالدار بن جاتا, لیکن وہ لالسی نہ تھا, کبھی کسی سے کچھ نہ مانگتا. ہاں, جو کوئی اسے اپنی مرضی سے کچھ دیتا وہ شکریہ کے ساتھ لے لیتا. آہستہ آہستہ خواجہ بخت جمال کے علم کی شہرت وزیر الکش کے کانوں تک بھی پہنچی اور اس کے دل میں بخت جمال سے ملنے کی آرزو کروٹیں لینے لگی. اس نے اپنے ایک غلام کو بخت جمال کے گھر بھیجا تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ محل میں لے آئے, لیکن بخت جمال نے غلام کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا, اگر وزیر الکش مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو انہیں میرے گھر آنا چاہیے, مجھے ان سے ملنے کی خواہش نہیں, میں ان کے محل میں نہیں جاؤں گا. غلام نے یہی بات الکش سے جا کر کہہ دی. الکش پہلے تو غصے سے لال پیلا ہوا کہ ایک معمولی آدمی کی یہ جرت کہ وہ وزیر کے بلانے پر نہ آئے اور ٹکا سے جواب دے دے, لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ خود ہی اس کے ہاں پہنچ گیا. بخت جمال نے اس کو بڑی عزت سے اپنے پاس بٹھایا اور حاتر توازو کی اور کہا, جنابے والا, میں ایک غریب آدمی ہوں, میرے گھر آپ کا آنا میری خوش نصیبی ہے, فرمائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. ہم نے سنا ہے کہ تمہیں نجوم میں کمال حاصل ہے, تم غیب کی باتیں بتاتے ہو, کیا تم ہمیں یہ کمال سکھا سکتے ہو؟ یہ سن کر خواجہ بخت جمال چند لمحے چپ رہا, پھر کہنے لگا, جناب میں کیا اور میرا کمال کیا؟ بزرگوں سے جو کچھ مجھ تک پہنچا ہے اسے میں نے اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے. اگر آپ یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کیا انکار ہے, لیکن جناب اس کے لیے میرے ہی گھر آنا ہوگا آپ کو, ہمیں تمہاری یہ شرط منظور ہے, وزیر الکش نے کہا. اور پھر خواجہ بخت جمال کا امتحان لینے کے لیے اسے چند باتیں پوچھی, جن کا اس نے حساب لگا کر ایسا جواب دیا کہ الکش حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا, کیونکہ یہ وہ باتیں تھیں جنہیں خود الکش کے سوا دنیا میں کوئی اور شخص نہیں جانتا تھا. الکش روزانہ بخت جمال کے گھر جاتا اور اسے علم نجوم سیکھتا. آہستہ آہستہ ان دونوں میں بہت محبت ہو گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اگر کسی روز ان کی ملاقات نہ ہوتی تو دونوں بے چین رہتے. بخت جمال نے اپنے دوست وزیر الکش کو بڑی محنت سے نجوم کی تعلیم دی اور الکش سب کچھ بہت جلد سیکھ گیا. اب وہ بھی دوسروں کی قسمت کا حال بتایا کرتا تھا اور اس کی بتائی ہوئی باتیں سچی نکلتی تھی. ایک روز وزیر الکش نے اپنے دوست بخت جمال کی تقدیر کا حساب لگایا تو اسے معلوم ہوا کہ آنے والے 40 دن بخت جمال کے لیے سخت منفوس ہے. اگر وہ ان 40 دنوں میں گھر سے باہر نکلا تو اس کی جان کو خطرہ ہے. یہ دیکھ کر وہ سخت پریشان ہوا. وہ جانتا تھا کہ اس کے حساب میں غلطی نہیں ہو سکتی. وہ اسی وقت بخت جمال کے گھر گیا اور اسے بتایا کہ آئندہ 40 دن اس کی زندگی میں بہت خطرے سے بھاری گزریں گے. ان دنوں میں وہ ہرگز گھر سے باہر نہ نکلے. یہ سن کر بخت جمال فکر مند ہوا. اس نے بھی اپنے بارے میں حساب لگایا تو اسے معلوم ہوا کہ الکش سچ کہتا ہے. اب میں جاتا ہوں, انشاءاللہ 40 دن کے بعد ملاقات ہوگی, الکش نے کہا. بہت بہتر, جو خدا کی مرضی, بخت جمال نے جواب کیا. میں 40 دن تک گھر ہی میں رہوں گا اور امید تو یہی ہے کہ میری جان سلامت رہے گی, آگے اللہ جانے. الکش کے جانے کے بعد بخت جمال نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور آپ ایک گوشے میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگا. دن ایک ایک کر کے گزرنے لگے, یہاں تک کہ 39واں دن بھی خیریت سے گزر گیا. اب بخت جمال کو اطمینان ہوا کہ منحوس گھڑیاں ٹل گئیں. 40ویں روز وہ صبح سویرے بیدار ہو کر ہوا, نہا کر کپڑے پہنے اور یہ سوچ کر گھر سے نکلا کہ الکش سے ملاقات کرنی چاہیے. وہ بیچارہ ہمیشہ میرے گھر آتا رہا ہے اور میں ایک مرتبہ بھی اس کے ہاں نہیں گیا. الکش سے ملاقات کی خوشی میں وہ یہ بھی بھول گیا کہ 40واں دن پورا نہیں گزرا ہے اور ابھی آفت کی گھڑی اس کے سر پر کھڑی ہے. اس نے حساب لگانے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی اور الکش کے محل کی جانب روانہ ہو گیا. الکش کے محل کی طرف دو راستے جاتے تھے, ایک شہر میں سے اور دوسرا دریا کے ساتھ ساتھ. بخت جمال نے سوچا کہ شہر کے راستے سے جانا ٹھیک نہیں, राह में बहुत से लोग मिलेंगे और तरह तरह की बातें पूछकर वक्त जाया करेंगे, इसलिए दरिया की तरफ से जाना चाहिए। ये सोचकर वो उसी रास्ते पर चल पड़ा। चलता गया, यहाँ तक कि दोपहर हो गई और सूरज उसके सर पर चमकने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भूलकर एक बयाबान में आ निकला है। हर तरफ गहरा सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता था, न जानवर। हाँ, कुछ फासले पर उसे एक बहुत पुरानी लेकिन अजीम आलिशान इमारत के भयानक खंडर जरूर दिखाई दिए। थोड़ी देर से स्थान के लिए बख्शमाल उन्हीं खंडरों की जानब चला। वो असल में ये मालूम करना चाहता था कि खंडर किस इमारत के हैं और हो सकता है कोई आदमी इनमें रहता भी हो। जब वो इस पुरानी हवेली के खंडरों में दाखिल हुआ तो मालूम हुआ कि इमारत हजारों वर्ष पुरानी है, क्योंकि उसकी ईंटें काली और बुसीदा हो चुकी थी। दीवारों पर से जगह जगह मसाला झड़ चुका था। खंडरों के अंदर बड़े बड़े कमरे और कोठरियां नजर आ रही थी, जिनके अंदर अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ियों ने बेशुमार जाले तान रखे थे। छतों पर हजारों चमगादड़ें भी उल्टी लटकी हुई थी। बख्शमाल ये मंजर देखकर किसी कदर खौफजदा हुआ, लेकिन थका हुआ होने की वजह से कुछ देर आराम करना भी चाहता था, इसलिए एक बंद दरवाजे के साथ पीठ लगाकर बैठ गया। यकायक उसकी निगाह दरवाजे पर लगे हुए ताले पर पड़ी। ताला बहुत बड़ा था लेकिन उसे जंग खा चुका था। बख्शमाल ने बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर ताले को छुआ और जरा जोर लगाया तो वो टूट गया। ताला तोड़ने के बाद उसने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। हल्के से शोर के साथ दीमक लगी हुई लकड़ी का ये भारी दरवाजा खुल गया। उन्हें झांककर देखा तो एक तहखाना सा नजर आया, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। वो सोचने लगा, खुदा मालूम इस तहखाने में क्या है, देखना तो चाहिए। धड़कते हुए दिल से वो आहिस्ता आहिस्ता इस तारीख तहखाने में उतरने लगा। अब उसने अपने आप को एक लंबे चौड़े हॉल में पाया, जिसकी छत को ऊंचे सुतूनों ने सहारा दे रखा था। यहाँ हर तरफ गर्द गुबार जमा हुआ था, एक अजीब किस्म की बदबू फैली हुई थी। हॉल के एक गोशे में कुछ चीजें रखी हुई थी और वो उधर गया। ये लोहे के बड़े बड़े संदूक थे और इन सब में ताले लगे हुए थे, लेकिन उन्हें भी जंग खा चुका था, इसलिए बख्शमाल के लिए कुफल खोलना कुछ दुश्वार न था। चंद मिनट के अंदर अंदर उसने सारे कुफल तोड़ डाले। उसने जू ही पहले संदूक का ढकना उठाया तो मारे हैरत के उसका जिस्म सुन हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन न आता था, ये संदूक जवाहरात से लबालब भरा हुआ था। बख्शमाल ने कांपते हुए हाथों से दूसरा संदूक खोला। उसमें भी हीरे, अशरफियां और सोने के जेवर भरे हुए थे। अब उसने संदूकों को गिना, इनकी तादाद 7 थी और सबके अंदर बेशुमार दौलत थी। इस खजाने को पाकर ख्वाजा बख्शमाल के होश उड़ गए। उसकी समझ में न आता था कि आखिर यह खजाना अब तक लोगों की नजरों से ओझल क्यों रहा। वो इतना बदखौस हो चुका था कि अपने इल्म के जरिए भी इस राज का हल पाने में नाकाम रहा। आखिर उसने फैसला किया कि वजीर अलकश को इसके बारे में बताना चाहिए। ये दौलत मेरे किस काम की, मैं इसे अलकश को दे दूंगा। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला, तहखाने का दरवाजा बंद किया और खंडरों से बाहर आ गया। सूरज अब भी आसमान से आग बरसा रहा था, लेकिन ख्वाजा बख्शमाल को इसकी कोई परवाह न थी। खजाना पा लेने की खुशी में वो दौड़ता हुआ शहर की तरफ गया, फिर वहां से अलकश वजीर के महल का रास्ता लिया। अलकश को जब उसके खादिम ने बताया कि ख्वाजा बख्शमाल मुलाकात के लिए आया है तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसके हिसाब से अभी 40वां दिन पूरा नहीं हुआ था और ख्वाजा बख्शमाल की जान सूर्य गुरूब होने तक खतरे में थी। वो जल्दी से महल के दरवाजे पर आया, उसे बड़ी इज्जत से अपने साथ अंदर ले गया और कहने लगा, ख्वाजा साहब आपने क्यों तकलीफ की, मैं तो खुद मगरिब के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होने का इरादा कर रहा था। आपको मालूम है आज 40वां दिन है। हाँ भाई, आज 40वां दिन है और 39 दिनों की तरह ये दिन भी खैरियत से गुजर जाएगा, लेकिन ताज्जुब ये है कि ये 40वां दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन साबित हुआ, ख्वाजा ने कहा। वो कैसे, अलकश ने पूछा, और तब ख्वाजा बख्शमाल ने खजाना मिलने का तमाम वाक्य अलकश को सुनाया और आखिर में बोला, ये खजाना आप ही को मुबारक हो, मैं भला इतनी दौलत का क्या करूंगा। हाँ, अगर आपका जी चाहे तो इसमें से कुछ मुझको भी दे दीजिएगा, मेरे लिए वही बहुत होगा। अलकश ने जल्दी से 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद सवार हुआ और दूसरे पर ख्वाजा बख्शमाल को सवार कर दिया। फिर दरिया को जाने वाली सड़क पर घोड़ा डाल दिया। इसी पुरानी इमारत के खंडरों के नजदीक जाकर घोड़ों से उतरे और सीधे तहखाने में गए। बख्शमाल ने सातों संदूक बारी बारी खोलकर अलकश को दिखाए। जवाहरात का गाना देखकर अलकश की आंखें फटी की फटी रह गई और अब उसके दिल में बेईमानी आई। उसने सोचा ऐसा न हो कि बख्शमाल किसी और से जिक्र कर दे, फिर ये बात बादशाह तक पहुंच जाए। ऐसा हुआ तो इस गाने पर बादशाह कब्जा कर लेगा और मेरे हाथ कुछ न आएगा। इसलिए जरूरी है कि बख्शमाल का काम तमाम कर दिया जाए ताकि खजाने का राज किसी और पर जाहिर न हो सके। ये सोचकर अलकश ने बख्शमाल को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और आप उसके सीने पर चढ़ बैठा। बख्शमाल अपने दोस्त की इस हरकत पर सख्त हैरान हुआ और कहने लगा, ए अलकश, ये क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हुई? हाँ, तूने बहुत बड़ी खता की है, अलकश ने कहा और कमर से बंधे हुए चमकदार खंजर को निकाल लिया। तेरी खता ये है कि तूने इस खजाने का जिक्र मुझसे किया और अब मैं डरता हूँ कि अगर तूने इसका पता किसी और को बता दिया तो बात बादशाह का बात कामरान तक पहुँच जाएगी और बादशाह इस पर कब्जा कर लेगा। तेरी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की सूरत यही है कि तुझे मौत के घाट उतार दूं। ये सुनकर ख्वाजा बख्शमाल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो आजी से कहने लगा, मैं वादा करता हूँ कि इस खजाने के बारे में किसी से जिक्र न करूंगा। अलकश ने कहका लगाया और बोला, बकवास बंद कर बुढ़े, तू अपनी जान बचाने के लिए कसमें खा रहा है। मुझे तेरी कसम का कोई भरोसा नहीं, तुझे अब मरना है, तैयार हो जा। ख्वाजा बख्शमाल ने बहतीरी खुशामद की मगर बेरहम अलकश को जरा तरस आया। उसकी सर पर शैतान सवार था और दौलत की चमक धमक ने उसे अंधा कर दिया था। जब ख्वाजा ने देखा कि जान बचाने की कोई सूरत नहीं और ये जालिम उसका खून बहाए बगैर बाज नहीं आएगा तो उसने कहा, मेरी एक वसीयत है, अगर उसे पूरा करने का वादा करो तो बयान करूं। बताओ क्या है वो वसीयत, अलकश ने कहा। मेरे घर में अनकरीब बच्चा होने वाला है, ख्वाजा बख्शमाल ने कहा। अगर लड़का पैदा हुआ तो मेरी बीवी से कहना कि उसका नाम बुजुर्ग महर रखे। मेरे मरने की खबर मेरी बीवी को ना देना। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी ये वसीयत पूरी कर दूंगा, अलकश ने कहा और ये कहकर ख्वाजा बख्शमाल को मार डाला। इसके बाद अलकश बाहर निकला और ख्वाजा बख्शमाल के घोड़े को भी मार डाला। फिर उसके घोड़े और ख्वाजा की लाशें इसी इमारत के एक गोशे में घसीट कर डाल दी। दरिया पर जाकर हाथ पैर धोए और अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ चल दिया। उसे अब ये इत्मीनान था कि कोई दूसरा इस खजाने पर कब्जा नहीं कर सकेगा। महल में जाकर उसने गुलामों और सिपाहियों को जमा किया और रात की तारीखी में सारा खजाना वहां से उठाकर महल में ले आया। इसके बाद उसने मुल्क के बेहतरीन राजों को बुलाया और उस पुरानी इमारत को गिराकर उसकी जगह एक नई इमारत और बाग बनाने का हुक्म दिया। हजार राजबढ़ई, लोहार और बागवान दिन रात काम करने लगे और चंद महीनों के अंदर अंदर उन्होंने दरिया के किनारे एक आलीशान महल बनाकर खड़ा कर दिया। अलकश महल और उसके बाग को देखकर बेहद खुश हुआ और उसका नाम बाग बेदाग रखा। इस अरसे में उसने ख्वाजा बख्शमाल की बीवी से कह दिया था कि उसके शोहर को एक जरूरी काम के लिए चीन भेज दिया गया है और जाते हुए वो कह गया है कि घर में लड़का पैदा हो तो उसका नाम बुजुर्ग महर रखना। कुछ दिन बाद ख्वाजा बख्शमाल के घर एक चांद से लड़के ने जन्म लिया तो उसकी माँ ने उसका नाम बुजुर्ग महर रखा। अजीब लड़का। बुजुर्ग महर जब पैदा हुआ तो उसकी माँ ख्वाजा बख्शमाल को याद करके बहुत रोई। अरसे से उसकी खैर खबर मालूम नहीं हुई थी और न वजीर अलकश ने उसके बारे में कुछ और बताया था। बदनसीब औरत कई मरतबा वजीर के महल की तरफ गई मगर गुलामों और दरबानों ने उसे धक्के देकर निकाल दिया और वो दुखिया किस्मत पर सब्र शुक्र करके घर में बैठ गई और मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने बच्चे का पेट पालने लगी। नन्ना बुजुर्ग महर जितना खूबसूरत था उतना अक्लमंद भी था। ऐसी ऐसी बातें करता जिन्हें सुनकर बड़े बूढ़े दांतों में उंगलियां दबा देते। जब वो 5 वर्ष का हुआ तो उसकी माँ उसे लेकर अपने मोहल्ले के एक उस्ताद के पास गई। उस उस्ताद के पास मोहल्ले भर के बच्चे पढ़ने आते थे। एक जमाने में बुजुर्ग महर के बाप ख्वाजा बख्शमाल ने उस उस्ताद को पढ़ाया था और ये बात बुजुर्ग महर की माँ को मालूम थी। उसने उस्ताद से कहा कि ये बच्चा तुम्हारे उस्ताद का बेटा है और क्योंकि अलकश ने तुम्हारे उस्ताद को तुम किसी जरूरी काम से चीन भेजा है तो अब तुम इसको पढ़ाओ। उस्ताद ने एक आदमी था, उसने बुजुर्ग महर को प्यार किया और कहा कि मैं इसे मोहब्बत और शौक से पढ़ाऊंगा। इसके बाद बुजुर्ग महर रोजाना उस्ताद के पास पढ़ने के लिए जाने लगा और चंद रोज के अंदर अंदर तमाम बच्चों के से आगे निकल गया। जो बच्चे एक सबक दो दिन में याद करते, उस सबक को बुजुर्ग महर एक घंटे में याद कर लेता था। अभी वो 10 वर्ष ही का था, उसने कई इल्म फन सीख लिए और उसमें खूब माहिर हो गया। एक रोज शाम को जुर्ज महर छुट्टी के बाद घर आया तो उसकी माँ बिस्तर पर लेटी थी। उसने पूछा, अम्मा लेटी क्यों हो? मुझे बुखार हो गया है बेटा, अम्मा ने कहा। आज तुम भूखे ही सो जाओ। बेटे मैं मजदूरी नहीं कर सकी, इसलिए खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं। ये सुनकर बुजुर्ग महर बेहद फिक्रमंद हुआ। अपनी भूख से ज्यादा उसे माँ की बीमारी का दुख था। वो कहने लगा, अम्मा क्या घर में कोई चीज ऐसी नहीं जिसे बाजार में बेचाऊं और कुछ रकम मिल जाए? नहीं बेटा, अब ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रही जो बाजार में बिक सके। पहले ही तमाम चीजें एक एक करके बिक चुकी हैं। हाँ, ताकि ऊपर तुम्हारे नाना हकीम हमास के हाथ की लिखी हुई एक बहुत पुरानी किताब पड़ी है। कोशिश करो, शायद ये किताब कोई खरीद ले। बुजुर्ग महर ने ताक में झांका तो कोने में एक मोटी सी किताब पड़ी थी जिस पर मोटे हरूफ में लिखा था हमास नामा। जो शख्स इस किताब को गौर से पढ़ेगा और समझेगा, उस पर अगली पिछली तमाम बातें जाहिर हो जाएंगी। किताब बेहद पुरानी थी और उसके वर्क नहायत बसीदा थे, कहीं कहीं अल्फाज भी धुंधले पड़ गए थे। बुजुर्ग महर ये किताब देखकर उसे पढ़ने में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर साथ साथ किताब भी पढ़ता जाता। फिर यकायक वो हंसा और कह कह लगाने लगा। बेटे की हालत देखकर माँ अपनी बीमारी भूल गई और कहने लगी, किताब पढ़कर कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? अभी तुम धाड़े मार मार कर रो रहे थे और अब कह कह लगा रहे हो। बुजुर्ग महर ने किताब बंद कर दी और माँ से कहा, ये अजीबोगरीब किताब है, इसे पढ़कर मुझे पता चल गया है कि एक जालिम शख्स ने किस तरह मेरे बेगुनाह बाप को हलाक किया। यही वजह थी कि मैं रोया और हंसा यूं कि मैं इंशाल्लाह जालिम से अपने बाप के खून का बदला लेने में कामयाब हो जाऊंगा। बुजुर्ग महर की मां ने जब ये सुना कि ख्वाजा बख्त जमाल को हलाक कर दिया गया है और ये खून वजीर अलकश ने किया है, तो वो भी खूब रोई। लेकिन बुजुर्ग महर ने उसे दिलासा दिया और कहा कि अम्मा अब रंज न करो, मैं बहुत जल्द वजीर से इंतकाम लूंगा। ये किताब बताती है कि बादशाह मुझे अपना वजीर बनाएगा। मेरे बाप का ढांचा अभी तक उसी जगह मौजूद है जिस जगह अलकश वजीर ने नया महल बनवाया है। अच्छा, मैं बाजार जाकर खाने पीने की चीजें लाता हूँ, लेकिन चीजें खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? क्या किसी उधार लोगे? नहीं अम्मा, उधार लेना ठीक नहीं। इस किताब ने मुझे एक ऐसा तरीका बताया है जिससे मैं खाने पीने की चीजें पैसों के बगैर ही ले आया करूँगा, तुम फिक्र न करो। और अपनी वालिदा को हैरानो परेशान छोड़कर बुजुर्ग महर घर से निकला। बुजुर्ग महर घर से निकला, सीधा बुनिया की दुकान पर गया और कहने लगा, तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, बुनिया ने जवाब दिया, तुम ख्वाजा बख्त जमाल के लड़के हो। वजीर ने मेरे बेगुनाह बाप को कत्ल कर दिया, बुजुर्ग महर ने कहा, और मैं अपने बाप के खून का बदला लूंगा। दुकानदार ये सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, तुम वजीर से कैसे इंतकाम लोगे? वो तुम्हें भी मरवा देगा। बुजुर्ग महर हंसा और बोला, वजीर मेरा बाल भी भीगा नहीं कर सकता। अच्छा, अब तुम ऐसा करो कि रोजाना 2 सेर आटा, 1 सेर शक्कर, 8 सेर घी, 5 सेर कोयले मेरे घर भिजवा दिया करो। लेकिन पैसे? बुनिया ने पूछा। बुजुर्ग महर ने आंखें निकालकर बुनिया को घूरा और कहा, तुम मुझसे पैसे मांगता है? मैं जानता हूँ कि अभी पिछले महीने किसान कई 100 मन गेहूं बेचने के लिए तेरे पास लाया था और तूने उसे धोखा देकर उसके गेहूं पर कब्जा कर लिया था। और अगर ये बात अभी जाकर बादशाह की अदालत में कह दूं तो वो तेरी बोटियां चील कवों को खिलाने का हुक्म दे देगा। बुजुर्ग महर के मुंह से ये बात सुनकर बनिया थर थर कांपने लगा। सचमुच उसने पिछले महीने किसान को धोखे से लूट लिया था और इसके सारे गेहूं पर कब्जा कर लिया था। वो हैरान था कि ये राज बुजुर्ग महर को कैसे मालूम हुआ। हाथ जोड़कर कहने लगा, खुदा के लिए ये बात किसी से ना कहना, मैं हर तरह से तुम्हारी हिम्मत के लिए तैयार हूँ। जितनी चीजें तुमने कही हैं रोजाना तुम्हारे घर भिजवा दिया करूंगा। अब बुजुर्ग महर किसाई की दुकान पर गया, वो छुरियां और कुल्हाड़े तेज कर रहा था। बुजुर्ग महर ने उससे कहा, तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, तुम ख्वाजा बख्त जमाल के लड़के हो। काम मुझसे? क्या काम है मुझसे? किसाई ने सख्ती से कहा। उसका ख्याल था कि लड़का या तो गोश्त उधार लेने आया है या कुछ पैसे मांगेगा। बुजुर्ग महर ने कहा, तुम रोजाना 1 सेर गोश्त मेरे घर भिजवा दिया करो। 1 सेर? किसाई ने हैरत से कहा। और पैसे कौन देगा? जुर्जमेहर हंसा और कहने लगा, अरे जालिम, तुम मुझसे पैसे मांगता है क्या? भूल गया कि पिछले ही महीने तुमने बकरियां बेचने वाले एक ताजर से कई सौ बकरियां खरीदी, और जब वो कीमत लेने के लिए तेरे मकान में आया तो तुमने उसे मार के अपने मकान की एक अंधेरी कोठरी में गाड़ दिया। अभी जाकर बादशाह से कहता हूँ। ये बात सुनकर किसाब का तो दम ही निकल गया, होंठ खुश हो गए और चेहरा जर्द पड़ गया। वो हैरान था कि इस 10 वर्ष की लड़की को ये बात कैसे मालूम हो गई। उसने जल्दी से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं एक सेब के बजाय 2 सेब गोश्त तुम्हारे घर भिजवा दिया करूंगा, लेकिन ताजर को मार डालने का किस्सा किसी से न कहना। यहाँ से बुजुर्ग मेहर एक यहूदी सर्राफ के पास पहुंचा, जिसके बारे में सारे मोहल्ले में मशहूर था कि बेहद कंजूस और बददिमाग आदमी है और उसने बेइंतहा दौलत जमा कर रखी है। वो लोगों को सूद पर कर्ज देता और 10 रुपए की जगह 20 रुपए वसूल करता था। बुजुर्ग मेहर को देखते ही वो कहने लगा, आओ ख्वाजा बख्शमाल के बेटे, क्या घर की कोई चीज बेचने के लिए लाए हो या कुछ रकम उधार चाहिए? लेकिन ये सोच लो, मैं सूद दुगना वसूल करता हूँ। बुजुर्ग मेहर ने कहका लगाया और बोला, सुनो लालची बुढ़े, मैं ना कोई कीमती चीज बेचने आया हूँ, ना सूद पर रुपया लेने आया हूँ। अगर तू जान की सलामती चाहता है तो रोजाना 100 रुपए की थैली हमारे घर भिजवा दिया कर। यहूदी ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया और अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि इस बदतमीज लड़के को मार पीट कर यहाँ से निकाल दो। मुलाजिम बुजुर्ग मेहर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि बुजुर्ग मेहर ने सराफ के कान में कहा, क्यों तेरी शामत आई है? अभी बादशाह की अदालत में जाकर कहता हूँ कि तूने पिछले महीने 2 मालदार बेवा औरतों का जेवर धोखे से छीन लिया था। ये सुनकर यहूदी सराफ गश खाकर गिरा और उसके मुलाजिम बुजुर्ग मेहर को छोड़कर अपने आका को होश में लाने की तदबीर करने लगे। चंद लम्हे बाद वो होश में आया तो बरसों का बीमार नजर आता था। उसने बुजुर्ग मेहर को एक तरफ बुलाकर बड़ी आजिज़ी से कहा, ये बात बादशाह से हरगिज न कहना, मैं रोज 100 रुपए की थैली तुम्हारे घर भिजवा दिया करूंगा। अगर किसी दिन नागा किया तो तुम्हारी खैर नहीं, बुजुर्ग मेहर ने कहा और उछलता कूदता अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद बुनिया की दुकान से उसके घर गेहूं का आटा, शक्कर, घी और कोयले आए। फिर किसाई का नौकर गोश्त दे गया। इसके बाद सर्राफ खुद आया और 100 रुपए की थैली देकर खामोशी से चला गया। बुजुर्ग मेहर की माँ ये सामान देकर हैरान थी, कहने लगी, बेटा ये क्या मुअम्मा है, तुम ये सामान कितने रुपए का खरीद कर लाए हो और रकम कहाँ से आई? अम्मा ये बात ना पूछो, बुजुर्ग मेहर ने हंसकर कहा, ये सब मेरे नाना हकीम हामास की इसी पुरानी किताब का करिश्मा है। 2 साल गुजर गए। इस अरसे में बुजुर्ग मेहर खाने पीने की फिक्र से आजाद होकर अपने नाना हकीम हामास की लिखी हुई किताब पढ़ने और समझने में लगा रहा। जो जो वो किताब को पढ़ता गया, सैकड़ों और हजारों बातें उसे मालूम होती गई, यहाँ तक कि गैब के इल्म में वो ऐसा कामिल हुआ कि राह चलते आदमियों के दिल की बात बूझ लेता और कभी ऐसा ना हुआ कि उसकी जुबान से निकली हुई कोई बात गलत साबित हुई हो। लोग कहते थे कि लड़का अपने बाप ख्वाजा बख्शमाल से भी ज्यादा जहीन और बाकमाल है। एक रोज बुजुर्ग मेहर की माँ ने कहा, बेटा मेरा जी मेथी का साग खाने को चाहता है, लेकिन शहर में मेथी का साग नहीं मिलता। मैंने सुना है कि वजीर अलकश के बाग में बागे बेदाद में मेथी का साग मौजूद है, किसी को भेजकर वहां से मंगवाओ। वजीर अलकश का नाम सुनकर बुजुर्ग मेहर के तन बदन में आग लग गई। हकीम हामास की किताब ने उसे अपने बेगुनाह बाप के खून का बदला लेने से गाफिल कर दिया था। अब माँ ने वजीर का नाम लिया तो उसने किताब एक तरफ फेंक दी और उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, बहुत अच्छा माँ, मेथी का साग लेने मैं खुद बागे बेदाग जाता हूँ। जब बुजुर्ग मेहर बाग के पास पहुंचा तो उसका दरवाजा बंद था। उसने बागबान को आवाज दी। थोड़ी देर बाद एक मोटा ताजा आदमी दरवाजे पर आया। क्या देखता है कि 12-13 साल का एक भोला भाला लड़का खड़ा है, क्या बात है, क्या चाहिए? बागबान ने बुजुर्ग मेहर से पूछा। मेरी माँ का दिल मेथी का साग खाने को चाहता है, बुजुर्ग मेहर ने कहा, और मेथी का साग सिवाय इस बाग के और कहीं नहीं है। तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर थोड़ा सा साग दे दो। बागबान सख्त नाराज हुआ और कहने लगा, सिर्फ इतनी सी बात के लिए तूने मुझे आवाज दी? क्या मैंने कुंजड़े की दुकान खोल रखी है जो तुझे साग देता फिरूं? मुझे तेरे भोलपन पर तरस आता है, वरना इतना पीटता कि सारी जिंदगी याद करता, जा दफा हो जा। ये कहकर वो दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ा और कुफल को हाथ लगाना ही चाहता था कि बुजुर्ग मेहर ने चिल्लाकर कहा, खबरदार कुफल बंद न करना। कल तूने जो सांप मारा था उसकी मादा तुझे डसने के लिए उस कुफल के सुराख में छुपी बैठी है। ये सुनकर बागबान हैरान रह गया। उसने झुककर कुफल के सुराख में झांका तो सचमुच स्याह रंग का एक बारीक सांप, बारीक से धागे की तरह का एक सांप उसमें छुपा हुआ था। बागबान ने फौरन उसे हलाक किया और दिल में कहने लगा कि लड़का तो बड़े कमाल का है, मैंने खामहा उसे बुरा भला कहा। वो बुजुर्ग महल से पूछने लगा, तुम्हें किस तरह पता चला कि मैंने कल एक सांप मारा था और आज उसकी मादा मेरे डसने को इस कुफल के अंदर छुपी बैठी है? तुम्हें इन बातों से क्या? बुजुर्ग महल ने कहा, मेथी का साग देना है तो दे दो वरना मैं जाता हूँ। बागवान आजी से बोला, आओ मेरे साथ बाग में चलो, मैं तुम्हें बहुत सा साग दूंगा, लेकिन किसी से जिक्र मत करना कि ये साग मैंने तुम्हें दिया है, वजीर अलकश ने सुन लिया तो मेरी गर्दन उड़ा देगा। जुर्ज मेहर हंसा और कहने लगा, तुम अलकश की फिक्र मत करो, उसकी जिंदगी के दिन भी थोड़े ही रह गए हैं। जुर्ज मेहर जब बाग के अंदर गया तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। सैकड़ों किस्म के फूल और पौधे यहाँ लगे हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और जब जब ऊंचे फवारों में से दूध की माने सफेद पानी उबर रहा था। दरख्तों की शाखों पर हजारों खूबसूरत और हसीन परिंदे बैठे चहचहा रहे थे। बाग के बिल्कुल दरमियान में संगमरमर की बनी हुई एक आलीशान बारादरी थी, जिसकी दीवारों और फर्श पर हीरे जवाहरात जड़े गए थे और उनकी चमक इतनी थी कि आंख नहीं ठहरती थी। बागबान ने बुजुर्ग महल को अपने बाग के अंदर अलमास के बने हुए एक तख्त पर बिठाया और आप मेथी का साग तोड़ने के लिए दूसरी तरफ जाने ही लगा था कि वजीर अलकश भी टहलता हुआ उधर आ निकला। उसने बुजुर्ग महल को देखा तो बागबान से पूछा, ये कौन है? बागबान ने हाथ बांध कर कहा, हुजूर ये लड़का अजीबो गरीब बातें करता है जिन्हें सुनकर मेरी अकल तो दंग है। फिर उसने कोफिल में छुपे हुए सांप की दास्तान सुनाई। वजीर अलकश बहुत हैरान हुआ और गौर से बुजुर्ग महल को देखने लगा। फिर उसने बागबान को वहां से चले जाने का हुक्म दिया और बुजुर्ग महल को बारादरी में ले गया। तख्त पर बैठने के बाद अलकश ने बुजुर्ग महल से पूछा, लड़के तेरा नाम क्या है और तुझे इल्म कहां से हासिल हुआ? मेरा नाम बुजुर्ग महल है, मेरे बाप का नाम ख्वाजा बख्श जमाल और नाना का नाम हकीम हमास था। मैंने ये इल्म अपने नाना के किताब खामास नामा से हासिल किया है। ख्वाजा बख्श जमाल का नाम सुनकर अलकश घबराया और खौफ से कांप उठा, लेकिन फिर संभल कर बोला, तेरे बाप को मैं जानता हूँ, वो बहुत नेक और अच्छा आदमी है और उससे मैंने एक काम से मुल्क छीन भेजा है। ये सुनकर बुजुर्ग महल का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया, कहने लगा, आप गलत कहते हैं, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है, उसे एक जालिम और संगदिल शख्स ने दौलत के लालच में कत्ल कर दिया है। अब मैं अपने बाप के कत्ल का बदला लेने की फिक्र में हूँ। अलकश के होश उड़े, समझ गया उस लड़के को सब कुछ मालूम हो चुका है और ये मुझसे बदला लेगा। उसने दिल में फैसला कर लिया कि उसे किसी फरेब से ठिकाने लगा देना चाहिए। कहने लगा, अफसोस कि तुम्हारे बाप को किसी ने कत्ल कर दिया, मुझे अब तक ये बात मालूम न थी। खैर तुम रंज न करो, मैं इस पापी को अपने हाथ से सजा दूंगा। अब ये बताओ कि तुम इस बाग में कैसे आए? मेरी माँ ने मुझे मेथी का थोड़ा सा साग लेने भेजा था जो सिवाय इस बाग के शहर में कहीं और नहीं मिलता। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं अभी किसी गुलाम से कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मेथी का साग तोड़ लाए। ये कहकर अलकश एक तरफ चला गया और अपने खास गुलाम को तनाई में बुलाकर कहने लगा, एक लड़का बारादरी में बैठा है, उसे तहखाने में ले जाकर बंद कर दो, वो वहाँ भूखा प्यासा मर जाएगा। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हारी दिली आरजू पूरी कर दूंगा, वादा करता हूँ। गुलाम ने सीने पर दोनों हाथ रखकर सर झुकाया और बारादरी की तरफ चल दिया। उसने जाते ही बुजुर्ग महल को पकड़ लिया, एक हाथ से उसका गला दबाया, दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद किया और कंधे पर डालकर एक तहखाने में ले गया। बुजुर्ग महल को फर्श पर पटक कर बाहर से दरवाजा बंद करने ही लगा था कि बुजुर्ग महल ने जोर का कहका लगाया और कहा, ऐ हबशी गुलाम, ये क्या करता है? अलकश तेरे दिल की आरजू कभी पूरी न करेगा, इसने तुझसे झूठा वादा किया। याद रख, अगर तूने मुझे मारा तो अलकश तुझे भी जिंदा न छोड़ेगा।